नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिपुरपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञान्तिमरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः, परं पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्तु मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् उमास्वामी आचार्यदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की, उमा स्वामी आचार्य महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज अजीव तत्व के बारे में, सात तत्वों में से समझने की कोशिश करेंगे। चार अध्यायों में तो जीव तत्व की चर्चा आचार्य महाराज ने करी। अजीव तत्व को जानना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अनादि काल से चेतना के साथ कर्म का बंधन हुआ है। वह जो कर्म का बंधन है वह तो पुलगल वर्गनाओं के रूप में पौद्गलिक है। उसके माध्यम से मेरे भीतर जो राग द्वेष परिणाम होते हैं वे कथंचित जो भाव कर्म कहलाते हैं उनमें तो जीव और पुद्गल की मिली जुली अवस्था वैसे तो शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से वे भी आत्मा के नहीं हैं, लेकिन व्यवहार से अशुद्ध निश्चय से तो भाव कर्म को भी राग द्वेष परिणाम को भी आत्मा का माना गया। और जो नो कर्म है वो तो पौद्गलिक ही है, शरीर जिसको अपन कहते हैं। इन सब के बारे में अपना विशेष परिचय होना चाहिए। हमारे साथ कर्म लगे हुए हैं सो हम अपनी जो शुद्ध अवस्था है उसका अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कि पुद्गल में अत्यंत शुद्ध अवस्था में परमाणु ही रहता है, वैसे ही हम अपनी कर्मों से रहित शुद्ध अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि हम कर्म वर्गणाओं से मुक्त होने का उपाय नहीं करेंगे तब तक अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसा विचार करके इस अध्याय को समझकर हम अपने कर्मों की उनके स्वरूप की चर्चा यहां करके कर्म काटने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं कि पांचवा अध्याय पढ़ लिया, अजीव के बारे में वर्णन है बस। सो भैया, अजीव का वर्णन समझने का उद्देश्य क्या है? पुद्गल और स्कंद की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है। मेरे साथ जो सामान्य वर्गणाएं लगी हैं वे भी पौद्गलिक हैं। उन पौद्गलिक कारमन वर्गणाओं के द्वारा मेरे परिणामों में जो राग द्वेष होता है वह भी मुझे दूर करना है, वह भी मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा कहें, या कि मेरा नहीं है ऐसा कहें, एक नए की अपेक्षा यह भी ठीक है। जब तक हम राग द्वेष परिणाम को मेरे हैं, आत्मा के हैं ऐसा मानता रहूंगा, तो फिर मैं उन राग द्वेष परिणामों को हटाने का प्रयत्न क्यों करूंगा? जब मेरे ही हैं तो मुझे अपने से पृथक करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा विचार करके राग द्वेष परिणाम कथनचित मेरे नहीं है, मेरा तो स्वभाव वीतरागता है और शरीर के प्रति हमारी आसक्ति होती है, वो भी शरीर भी पौद्गलिक है। इस तरह से इस अध्याय में अपन अजीव तत्व का वर्णन करते हैं। विज्ञान ने परमाणु के द्वारा, उसके विखंडन के द्वारा और ऊर्जा प्राप्त की, ऊर्जा प्राप्त करने की विधि इजाद की, ठीक ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने अपने आत्मा में लगे हुए कर्मों का विखंडन कैसे किया जाए और शुद्ध जो चेतना है, अत्यंत ऊर्जावान है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये प्रक्रिया बताई है। स्वपन भी इसे, इस प्रक्रिया को अत्यंत वैज्ञानिक मान करके और विश्वास करके जैसा आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। छह द्रव्यों से मिला हुआ या मिल करके बना हुआ ये लोक आकाश है, उसमें से अजीव तो पांच हैं और उन अजीवों में से भी चार अजीव ऐसे हैं जो कि बहुप्रदेशी हैं, और जीव भी बहुप्रदेशी है, सो इस तरह से पांच बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहा गया। पहले सूत्र में यही चर्चा कर रहे हैं कि अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, जो छह द्रव्य हैं धर्म अधर्म आकाश काल जीव, ये सब इसमें से अजीव तो धर्म अधर्म आकाश इस प्रकार से और पुद्गल ये चार ही हैं। काल द्रव्य को इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि वह बहुप्रदेशी नहीं है, उसके लिए 39वें सूत्र में जाकर के आचार्य महाराज स्वयं व्याख्यायित करेंगे। यहां पर तो सिर्फ पांच अस्तिकाय में से जो चार अस्तिकाय हैं जो अजीव हैं उनके लिए एक सूत्र में व्याख्यायित कर दिया कि पांच अस्तिकाय में से चार अस्तिकाय तो बहुप्रदेशी जो हैं अजीव हैं। कौन कौन से हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये चार जो है बहुप्रदेशी का अर्थ क्या है? आकाश के जितने भाग को एक परमाणु घेरे उसे प्रदेश कहते हैं। इस तरह जिसमें बहुत सारे प्रदेश हों उसे बहुप्रदेशी कहेंगे। ये चारों अजीव और एक जीव द्रव्य इस प्रकार से पांच बहुत प्रदेश वाले होने से पांच अस्तिकाय कहलाते हैं। काय का अर्थ है बहुप्रदेशी और अस्थि का मतलब होना, तो अस्थि काय का अर्थ भी हुआ जो बहुप्रदेशी हैं, बहुत प्रदेश वाले हैं उन्हें अस्थिकाय कहते हैं। द्रव्याणी, ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल द्रव्य भी हैं, जी मत समझना कि अकेले अस्थिकाय ही हैं। सो एक अलग से सूत्र लिख दिया कि द्रव्याणी ये सब द्रव्य हैं। अब लेकिन इसमें छूटा जाता है कि कोई ये ना समझे कि अजीव ही द्रव्य हैं, जीव तो है ही नहीं है, तो लिख दिया तीसरा सूत्र के जीवास्य, जीव भी द्रव्य है। इस तरह से जीव के बारे में आचार्य महाराज संक्षेप में जीव को द्रव्य कह के आगे बढ़ रहे, पर अपन आज के विज्ञान के संदर्भ में देखें कि विज्ञान से पूछो कि जीव किसे कहेंगे या जीवन क्या है, तो कहते जिसमें रेस्पिरेशन हो, रीजनरेशन हो और सेंसेशन हो, उसे जीव कहेंगे। जैन दर्शन में भी 10 प्राण कहे गए हैं, जिनमें एक श्वासोच्छ्वास भी प्राण है। 10 प्राणों के द्वारा जीव जीता है, जो संगी पंचेंद्री है। कम से कम 4 प्राण तो एक इंद्री के चाहिए ही, आयु चाहिए, श्वासोच्छ्वास चाहिए, काय बल चाहिए और एक न एक इंद्री होना आवश्यक है। बिना इंद्री का तो सिद्ध भगवान के अलावा कोई संसारी जीव है नहीं भाई। तो एक इंद्री व 5 इंद्रियां भी प्राण हैं। इतना ही विज्ञान पकड़ पाता है जीव के बारे में। अपन तो ये भी मानते हैं कि जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, हैं? वो सब संसारी जीव है, जिसको बर्थ रिबर्थ जन्म मरण की पीड़ा भी सहनी पड़ती है, वो संसारी जीव है। विभिन्न 4 से लेकर के 10 प्राणों तक जो जीता है वो जीव है। वैसे तो जीव की शुद्ध निश्चय ने इसे परिभाषा देखें तो चेतना ही जिसका लक्षण है वो जीव है। यह तो परिभाषा 10 प्राणों वाली कि 10 प्राण जिसके हैं उसको जीव कहते, सो संसारी जीवों पर लागू होगी, लेकिन सिद्ध जीव भी तो जीव हैं। इसलिए जो चेतनावान है उसे जीव कहते, इसमें सब मुक्त जीव भी आ गए और संसारी जीव भी आ गए। विज्ञान ने कोशिश करी जीव को पकड़ने की, लेकिन विचार करो कि जीव कोई ऐसा भौतिक पदार्थ तो है नहीं जो कि अपने 5 इंद्रियों के पकड़ में आ सके। सो विज्ञान ने जो कुछ भी खोज की है वो सब 5 इंद्रियों से पकड़ में आने वाले भौतिक पदार्थ की है। सो क्या पकड़ में आएंगे? 10 प्राण जो कि पौद्गलिक हैं, उनमें से श्वासोच्छ्वास पकड़ में आ गई, इंद्रियां पकड़ में आ गई, जिनके माध्यम से हम जीव है ऐसा कह सकते हैं। या कि जीव कारण और तैय शरीर से युक्त होता है, सो तैय शरीर तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन तैय शरीर के माध्यम से जठराग्नि प्रज्वलित होती है और जो अपन भोजन करते हैं वो पच जाता है, ऐसा विज्ञान पकड़ लेता है कि हाँ जठराग्नि में ऊष्मा तो है। वह तैय शरीर का प्रतीक है, अपन कहें तो कह सकते हैं। इसी तरह विज्ञान ने यह भी कोशिश करी कि जो जीवित है जब जन्म लेता है तो उसके अंदर एक चार्ज होता है, और जब वो मरण को प्राप्त हो जाता है तो वो चार्ज नष्ट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इससे भी क्या पकड़ में आया? सिर्फ जो जीव के साथ तैय शरीर, जिससे कि इस औदारिक वैक्रिक आदि शरीरों को कांति मिलती है, उतनी ही अपन थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं कि हाँ इस तरह का विज्ञान भी जीव को मानता है। एक चीज और लिखी है कि जितने अधिक इंद्री जीव होगा उसके भीतर उतना ही हायर चार्ज होगा, और जितना कमती इंद्री वाला जीव होगा उसके बहुत कम चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 10 प्राणों में से जिसके जितने प्राण होंगे वही तो पकड़ में आएंगे। सो एक इंद्री है सो उसके एक ही प्राण है, और पंचेंद्री है सो उसके 5 इंद्री संबंधी जनित 5 प्राण हो गए। इस तरह से विज्ञान ने बहुत ऊपर ऊपर की बातें पकड़ करके और अपना काम शुरू किया, कर रहा है। लेकिन अपन को विश्वास करना चाहिए सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता पर, कि देखो उन्होंने तो बिना किसी प्रयोगशाला के विज्ञान ने तो जितने प्रयोग किए हैं सब प्रयोगशाला में किए हैं एपरेटस के माध्यम से, लेकिन अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से जीव का जैसा स्वरूप है, चाहे मुक्त हो चाहे संसारी हो, चाहे त्रस हो चाहे स्थावर हो, संगी हो या कि असंगी हो, सबका जैसा स्वरूप है सो अपन को वैसा जान करके और अपनी जानकारी के लिए भी अपने ज्ञान के लिए भी बता दिया। विज्ञान ऑरा या इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड हरेक चेतन द्रव्य के चारों तरफ होता है ऐसी कल्पना भी करता है। सो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड है क्या? हमारी भाव दशा और हमारे तेजस शरीर को प्रभावित करती है। जैसी हमारी अच्छी बुरी भाव दशा होगी वैसे हमारे तेजस शरीर पर असर पड़ेगा और वही तेजस शरीर इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड की तरह विज्ञान पकड़ पा रहा है। इन सब चीजों से अपन को विश्वास हो जाता है कि नहीं, आचार्य भगवंतों ने जो जीव द्रव्य कहा है सो सच है, अपन को भी मानना चाहिए। वरना तो जो चीजें विज्ञान मानता है सो ही अपन आंखें बंद करके वो मान लेते हैं, बाबा वाक्य प्रमाण है। लेकिन भाई विज्ञान सब कुछ जानता है ऐसा नहीं है। दिव्य ज्ञान जो केवल ज्ञान है वो सब कुछ जानता है ऐसा अपन इससे विश्वास करें। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, जो द्रव्य है वो नित्य है अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होते और अवस्थित हैं। छह हैं तो छह ही रहेंगे, सात और पांच नहीं होंगे और अरूपी हैं। एकमात्र जीव को पुद्गल को छोड़ करके बाकी शेष पांच द्रव्य तो अरूपी ही हैं, अर्थात जिनमें रूप रस गंध और स्पर्श ये जो रूपी पदार्थ में होते हैं जिन्हें कि अपन आंख के द्वारा देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, स्पर्श करते छू करके देख सकते हैं, ऐसा इन द्रव्यों में गुण नहीं है, वो अरूपी हैं, अपन को इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आते हैं, उनको अरूपी कहा गया है। लेकिन कोई कंफ्यूज ना हो जाए तो एक सूत्र अलग से लिख दिया उसके तुरंत बाद की रूपी ना पुद्गला। छह द्रव्यों में से एक द्रव्य पुद्गल भी है उसे भी तुम अरूपी मत समझ लेना, वह तो रूपी है अर्थात जिसमें रूप रस गंध और स्पर्श चारों पाए जाते हैं। एक पाया जाता हो ऐसा नहीं है, जहां एक दिखाई पड़ता है वहां पर ये चारों ही होंगे। जैसे कि पानी में रंग दिखाई पड़ता है लेकिन उसमें गंध कैसी है जी, अपन अपनी नाक से भले ही नहीं पकड़ पाए लेकिन पानी की भी अपनी गंध है, पानी का भी अपना स्पर्श है। इस प्रकार चारों गुण उस पुद्गल में विद्यमान रहते हैं, उसे रूपी इसीलिए कहा जाता है। आकाशादेक द्रव्याणी, ये सब एक एक द्रव्य हैं, अनडिवाइजेबल होल्स जिसको साइंस में कहते हैं कि जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऐसे ये द्रव्य तीन हैं, धर्म अधर्म और आकाश। जो लोकाकाश और अलोकाकाश अपन ने अपनी कल्पना में आकाश को विभाजित कर लिया है, वास्तव में आकाश विभाजित नहीं हुआ। लोक आकाश तो उसे कहते हैं जहां तक कि छह द्रव्य पाए जाते हैं, वरना तो आकाश एक ही है जो अलोक आकाश में भी विद्यमान है और लोक आकाश में भी विद्यमान है, वो तो एक अखंड है, उसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी हैं। अभी वर्तमान में विज्ञान ने भी इसी तरह से धर्म द्रव्य के स्थान पर ईथर की कल्पना की है, जो कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में माध्यम बनता है। मुख्य बात यह है कि उसे भी सर्वव्यापी माना है, अखंड माना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर धर्म द्रव्य हो और कहीं पर नहीं हो, सर्वव्यापी है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अखंड ही है। निष्क्रियानी च, ये जितने भी द्रव्य हैं ये सब निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय है का मतलब क्या हुआ, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते? नहीं, इनमें चेंजेस तो होते रहते हैं लेकिन मूवेबल नहीं है, नॉट मूवेबल बट चेंजेबल। निरंतर इनमें परिवहन तो होता रहता है लेकिन आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए ऐसा नहीं होता है। इन सब में, द्रव्यों में धर्म अधर्म और आकाश, ये सब निष्क्रिय हैं, अर्थात गमन इत्यादि नहीं करते। जीव और पुद्गल अगर चलना चाहे तो उसे चलने में मदद करने वाला धर्म द्रव्य विद्यमान है, और जीव और पुद्गल अगर ठहरना चाहे तो उसे ठहरने में मदद करने वाला अधर्म द्रव्य भी वहीं स्थित है। लेकिन धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल जो बैठा हुआ है उससे बलात् ये नहीं कहेगा कि चलो, और चलते हुए जीव और पुद्गल को जिद करके जबरदस्ती बिठाने की कोशिश अधर्म द्रव्य नहीं करेगा। इस अपेक्षा से ये निष्क्रिय हैं, लेकिन इनके भीतर परिणमन तो निरंतर चलता रहता है। असंख्य आपदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, इनमें असंख्यात प्रदेश हैं। अपन ने जाना जैन दर्शन की सूक्ष्मता इतनी है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सबकी सबसे सूक्ष्म जो इकाई है उसकी भी चर्चा कर दी। क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई प्रदेश है। जितने आकाश को एक परमाणु घेरे थ्री डायमेंशनल, उसे अपन प्रदेश कहेंगे। और काल की सबसे छोटी इकाई, जितने समय में आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मंद गति से चल करके परमाणु जावे उसमें जितना समय लगे सो उसे एक समय कहते हैं। यह काल की सबसे छोटी इकाई है। अविभाजी प्रतिषेध तो अपने भावों की सबसे छोटी इकाई है, जो अपने भीतर गुणों के शक्ति अंश विद्यमान हैं वही अत्यंत भावों की सूक्ष्मता को प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्य की सबसे छोटी इकाई तो परमाणु है। इस प्रकार से चारों द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन सब की सबसे छोटी क्या इकाई हो सकती है, क्या यूनिट हो सकती है, वो भी आचार्यों ने यहां पर उल्लेखित की है। वो कह रहे हैं कि असंख्यात प्रदेश होते हैं धर्म अधर्म और एक जीव के अंदर। कोई भी जीव है वो असंख्यात प्रदेशी ही होगा, धर्म अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी ही हैं। इस प्रकार से आकाश के लिए भी अनंत प्रदेशी कहा, आकाशस्य अनंता, आकाश तो अनंत प्रदेशी है। विज्ञान जो लिखा हुआ है मैंने कि साइंस टुडे एक पत्रिका निकलती है मार्च 73 में, मिस्टर लॉरेंस ने लिखा था कि स्पेस इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट शेप, बहुत सूक्ष्म कोशिकाओं से युक्त है यह जो आकाश है। अपन इसी तरह जैन दर्शन में देखें कि आकाश को भी अनंत प्रदेशी कहा गया, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने प्रदेश आकाश के होते हैं। इस तरह से आकाश के बारे में उनके प्रदेशों की संख्या गिना दी, क्योंकि ये सब बहुप्रदेशी हैं, सो किसने कितने प्रदेश हैं यह जानना भी आवश्यक था। और संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, लेकिन पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसमें संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। ये पुद्गल की अपनी विशेषता है। असंख्यात प्रदेशी लोक आकाश में भी अनंत और अनंत अनंत प्रदेश वाला पुद्गल रह जाता है। कैसे रह जाता है भाई? तो आचार्य भगवंत कहते कि आकाश की बहुत परिणमन करने की सूक्ष्मता और अवगाहन देने की शक्ति, ये दो विशेषताएं आकाश के भीतर हैं। इसलिए अनंत अनंत प्रदेशी पुद्गल भी उसी असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र में अवगाहित हो जाता है, उसके अपने
सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन की क्षमता के कारण। विज्ञान में भी ऐसा ही कल्पना की गई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिवर्स हैज बीन एस्टिमेटेड बाय प्रोफेसर आइंस्टीन टू बी 129 फॉलोड बाय 7 चिपर्स। 129 शून्य लगाओ, नहीं 129 के बाद 77 शून्य लगाओ, इतनी बड़ी संख्या इलेक्ट्रॉन्स की यूनिवर्स में कल्पना की गई है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं? पुद्गल के ही रूप हैं, स्कंद हैं, जो कि आकाश में समाये हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता कि ठीक लिखा है कि संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल भी असंख्यात प्रदेशी आकाश में विद्यमान रहते हैं, रह सकते हैं। नाड़ो अणु के कोई भी प्रदेश नहीं होता। पुद्गल बहुप्रदेशी है, लेकिन पुद्गल का जो एक भेद अणु है, जिसको परमाणु कहते हैं, उसके एक ही प्रदेश होता है, बहुत प्रदेश नहीं होते। इसलिए अणु को लिख दिया कि नाड़ो अणु नहीं होता, ऐसा अर्थ नहीं है। अणु के बहुत प्रदेश नहीं होते, ये अर्थ इस सूत्र का है। और लोकाकाशी अवगाह, लोकाकाश में समस्त द्रव्यों को अवगाहन या जगह देने की सामर्थ्य है। जैसे कि अपन लोग कहते कि भैया कमरे में और घर में जगह भले ही कमती होवे, ने सवाब सब जने, लेकिन मेरे हृदय में तो सबके समाने की सामर्थ्य है। ऐसे ही आकाश का भी स्वभाव है, जितने भी द्रव्य हैं सब आकाश में जगह पाते हैं, समा जाते हैं। ये उसका परिणमन ही इस प्रकार का है आकाश का। विज्ञान कहता है कि यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर। जितनी भी चीजें अस्तित्व में हैं वो हर जगह पाई जाए, वो सब जहां तक पाई जाती हैं उसे ही अपन यूनिवर्स या विश्व कहेंगे। अपन भी तो यही कहते कि जहां तक छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे ही लोक आकाश कहते हैं, और अलोक आकाश में तो एकमात्र आकाश द्रव्य ही विद्यमान है। धर्माधर्म यो कृष्णि, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह तो समस्त लोक आकाश में है। ऐसा नहीं है भैया कि अपन को कहीं जाना है तो वहां पर धर्म द्रव्य विद्यमान ना हो, और अपन को लोक में कहीं भी बैठना हो, स्थान आपकी रेस्ट करना हो, तो वहां पर अधर्म द्रव्य विद्यमान ना हो। धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक आकाश में विद्यमान है। जैसे कि तिल में तेल होता है, कहां पर है कहां पर नहीं है, ये प्रश्न अपन उठा ही नहीं सकते। समस्त तिल में ही तेल विद्यमान है, ऐसे ही लोक आकाश में ये धर्म और अधर्म द्रव्य विद्यमान है। एक प्रदेशादिशु भाज्य है पुद्गला नाम, पुद्गल का अवगाह तो लोकाकाश के एक प्रदेश को विकल्प करके ही होता है। एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश को घेरता है, लेकिन उतने ही प्रदेश में अनंतानंत परमाणु रह सकते हैं। ये विशेषता काय की है? आकाश की सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन देने की सामर्थ्य। इतना ही जवाब है, उलझने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अपन अपने छोटे से ज्ञान से लगा रहे कि बताओ, पहले तो कह रहे थे कि एक प्रदेश वो है जिसमें एक परमाणु रहे, और अब कह लगे कि एक प्रदेश में अनंतानंत परमाणु रह सकते। नहीं भाई, जब प्रदेश की परिभाषा बनाई तो एक परमाणु जो कि अनडिवाइजेबल पार्टिकल है, उससे छोटा तो कोई नहीं है। वो जितना स्थान घेरे वही आकाश का एक प्रदेश है, लेकिन उतने स्थान में भी उस परमाणु को अपना नाभिकी अपना न्यूक्ली बना करके स्कंद दशा में और अलग अलग अनंत अनंत परमाणु विद्यमान रह सकते। एक सुई की नोक जहां पर टिके वहां पर एक द्रव्य है कि छह द्रव्य? भैया छह द्रव्य विद्यमान है, चाहे सुई की नोक बहुत थोड़ी सी जगह में टिकती है, लेकिन वहां पर भी आकाश के सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन की वजह से समस्त द्रव्य विद्यमान रहते हैं। अपन इसके बारे में इस तरह जान सकते हैं। असंख्या प्रदेशादिशु जीवानाम, जीवों का अवगाह तो लोक आकाश के असंख्यात में भाग में विकल्प से होता है। हर एक जीव का असंख्यात प्रदेशी अवगाहन है और लोक आकाश का भी असंख्यात प्रदेशी अवगाहन है। तो भैया इतने सारे अनंत अनंत जीव हैं असंख्यात प्रदेश वाले, और असंख्यात प्रदेशी तो लोक ही है, एक ही बन पे उनमें सबरों में है, लेकिन इतने सारे जीव कैसे रहेंगे? उत्तर आचार्य भगवंतों ने इतना ही दिया कि तुम खोजो, उठेरना भी भलाई का काम हो सकता है। इसलिए उपकार का अर्थ सिर्फ भलाई से ना लें, उसकी क्रिया या उसके कार्य से लेना ज्यादा ठीक होगा। आचार्य भगवंतों ने तो यही अर्थ लिया है। आकाश अश्यावगाह, जो जगह देता है या अवकाश देता है उसमें सहायक है, वह आकाश का उपकार है, आकाश का कार्य है, जो सब जीवों को स्पेस देता है। अपन तो तनक तनक सी को जगह दे दी तो ही में लड़ पड़ा कि हमने दई थी तुम्हें जगह। अरे तुमने कहां दई थी? आकाश तो नहीं इतनी सबको जगह, वो नहीं लड़ करो, लेकिन अपन तो थोड़ा सा स्थान तनक सड़क है, इतने से हम बैठ जाओ, इतने कर जाओ, इतना ही देंगे हम जगह, नहीं तो लड़ पड़ेंगे एक एक इंच जगह पर। लेकिन सोचो विचार तो करो स्वरूप कैसा है आकाश का, कि वो तो सबके लिए जगह देने के लिए उत्सुक है, और अपन अपन कर्ता बने की वजह से और हाथ संकोच लेते हैं, अपना कार्य नहीं है उसको भी अपन कर लेते हैं अज्ञानतावश। शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गलाना, जो पुद्गल है उसके क्या कार्य है? शरीर वचन और मन, उच्छ्वास और निश्वास, जिसको अपन श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ये पांचों चीजें पुद्गल के उपकार हैं, पुद्गल के फंक्शन हैं, उनके कार्य हैं। जो अपन को शरीर मिला है वो भी पौद्गलिक है, जो अपन वचन वर्गणाए उपयोग में लेते हैं वे सब भी पौद्गलिक हैं, मन से विचार करने के लिए जो अपन मदद लेते हैं, प्रयत्न विशेष करते हैं बोलने का, उसमें जो वर्गणाएं हैं वे भी पौद्गलिक हैं, जो श्वासोच्छ्वास अपन लेते हैं उसमें भी पुद्गल ही काम आता है। कितना कितना उपकार पुद्गल का है। अगर अपन देखें तो सवेरे से शाम तक अपन परावलंबी हैं, पुद्गल के आश्रित हैं। आचार्य भगवंत कहते कि जितना परावलंबन कम हो गए उतने स्वाश्रित होकर के अपने आत्मा का अनुभव कर सकता जीव। समझना चाहिए कि मैं पुद्गल के पराश्रित हूं, ये सब जो कुछ भी हो रहा है, वचन भी बोल रहा हूं, मन से सोच भी रहा हूं, श्वास उच्छ्वास ले रहा हूं, ये शरीर की मेरी रचना हुई है, सब पौद्गलिक है। जीव तो इसमें रह रहा है, जीव का स्वभाव तो अलग है, वो अपने स्वभाव में रहे तो इन सब से जो पराधीनता है परावलंबन है वो सब छूट जाएगा। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, ये भी पुद्गल के ही उपकार हैं, कार्य हैं। जो सुख दुख जीवन और मरण, जन्म मरण भी पौद्गलिक है, अपन को सुख दुख भी मिलता है वो भी पौद्गलिक है। असाता वेदनी कर्म का उदय है सो अपन दुखी हो जाते हैं, और साता वेदनी के उदय में सुख का अनुभव करते हैं, और जब प्राणों का वियोग हो जाता सो उसे मरण कहते हैं, प्राणों का संयोग हो जाता सो उसे जन्म कहते हैं। सारा खेल पुद्गल का ही है, जीव तो सिर्फ अपन को अपनी अज्ञानता की वजह से अपन कहते हैं कि फलाने ने हमें सुखी करो, फलाने ने हमें दुखी करो, फलाने ने हमें जन्म दो, फलाने ने हमारे मृत्यु में कारण बनो। ये भैया देखा जाए तो वास्तव में ये सारा ठाटवाट सब पुद्गल का है। आचार्यों ने यह भी लिखा हुआ है कि सुखादीनी अपि जीवानाम जीव कर्त उपकार एव, जो सुख दुख जन्म मरण है वह पुद्गल का तो उपकार है ही, एक जीव दूसरे के लिए भी सुख दुख जन्म मरण में निमित्त बने तो बन सकता है, लेकिन पुद्गल ही उनका उपादान कारण है, अंतरंग कारण। तो हमारे अगर सुख हुआ है तो किसी ने हमें सुख दिया नहीं है, हमारे साता कर्म के उदय से हम सुखी हैं। और अगर दुखी हैं तो कोई हमें दुख में निमित्त बन सकता है, लेकिन मेरे असाता कर्म की वजह से मैं दुखी हूं, ऐसा आचार्य भगवंतों ने विचार करने के लिए कहा। और साथ में ये भी कहा कि सिर्फ इतना ही विचार नहीं करना, इस चीज से बचना कि दूसरे के दुख में और मरण में तुम निमित्त बनो, इस चीज से बचने की कोशिश करना, क्योंकि तुम दूसरे के दुख में और मरण में निमित्त बन सकते हो। बनना चाहो तो दूसरे के सुख में निमित्त बनो और अपने को निमित्त ही मानो। जी हल्ला न करो कि हमने तुम्हें सुखी कर दो, हमने बचा लो तुम्हें, तुम का बचाओ, तुम का सुखी करो। वो तो अपने आप ही अपने साता कर्म की वजह से, अपने आयु कर्म की वजह से जीवन जी रहा और साता कर्म की वजह से सुखी है, सिर्फ अपन तो निमित्त हैं। ऐसा विचार करके किसी के सुख में निमित्त बने, किसी के बचाने में निमित्त बने, इतना ही अपन कर सकते हैं। यही अपना उपकार है या यही अपना कार्य है। एक और आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जीव का क्या उपकार है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर सहायक होना ये जीवों का उपकार है एक दूसरे के प्रति। लेकिन अपन एक दूसरे के लिए सहायक तो होते हैं, काय में राग द्वेष में सहायक होते हैं, भलाई में सहायक होते हो, बुराई में भी सहायक होते, ऐसा नहीं समझना। जैसे कि शिष्य और गुरु, अगर गुरु आज्ञा देता है तो वो शिष्य के ऊपर उपकार कर रहा, और शिष्य आज्ञा का पालन करके गुरु के ऊपर उपकार कर रहा है, ऐसा परस्पर एक दूसरे पर उपकार ये जीव का अपना कार्य है। जीव संसार में इसी तरह एक दूसरे के कार्य में सहयोग करता है, असहयोग भी करता है और निमित्त बनता रहता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने जीव के जीव पर उपकार की या परस्पर उपकार की भी चर्चा करी। काल द्रव्य का भी, सॉरी काल द्रव्य हाँ कालिक है, काल द्रव्य का भी क्या कार्य है ये पूछने पर आचार्य महाराज कहते कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य, जो निरंतर सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणमन हमारे भीतर हो रहा है, जिसे हम इन खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे वर्तना कहते हैं। निरंतर परिणमन हो रहा, वह अर्थ पर्याय के रूप में परिणमन चल रहा, उसे वर्तना कहते हैं। और जब परिणमन के बाद जो रिजल्ट आता है, पुरानी पर्याय नष्ट हो जाती है और नई पर्याय उत्पन्न हो जाती, वो परिणाम कहलाता है। सो परिणाम अपने को, रिजल्ट अपने को दिखता है कि कल तक छोटा सा क्या निकला था, डंठल में से बोड़ी निकली थी, अब तो पूरा फूल बन गया, ये परिणमन। उसमें कैसे वो बॉडी से फूल बना है ये नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन वो कल तक मुरझाया हुआ था या बंद था, आज तो प्रस्फुटित हो गया है, खिल गया है, ये परिणाम अपन को दिखाई पड़ता है। और क्रिया, निरंतर जो वाइब्रेशंस होते रहते हैं, परिस्पंदन होता रहता है द्रव्य में, वो काल के माध्यम से उसमें काल सहयोगी बनता है, यह भी काल का एक कार्य है, एक उपकार है। इस प्रकार से क्रिया और परत्व और अपरत्व, परत्व मतलब होता बड़ा या कि पुराना, और अपरत्व मतलब छोटा या कि नया। इस प्रकार से नया पुराना, छोटा बड़ा, इस प्रकार की जो कल्पना है वह भी काल के माध्यम से ही अपन कर पाते हैं। इन पांचों के लिए एक उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। अब जो ने भात बना हुई जाने, बाकी सबके समझ में नहीं आए, बना देखो हुई ये भात, क्या करते हैं, चावल पानी में डाल करके और अग्नि पर चढ़ा देते हैं और ढक्कन ढक देते हैं, निरंतर उन चावलों में भात बनने की ओर परिणमन जारी है जो अपन को दिखाई नहीं पड़ता। बाद में उन चावलों का ही भात बन गया, सो परिणाम अपन को दिखाई पड़ा, और अगर कोई ढक्कन खोल के वो धीरे से देखे तो वे चावल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब ऐसे खदबर हो रहे, चुड़ रहे हैं। वह परिस्पंदन हो रहा है, वह क्रिया चल रही है। वो कितनी देर पुराने हो गए, कितनी देर बन के हो गए तुम्हारे चावल, अब यहीं तो बने हैं। ऐसा जो नए और पुराने का अपन भाव करते हैं वह भी काल के आश्रित ही है। ये पांचों चीजें काल के आश्रित हैं, काल के ही कार्य हैं, इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, पुद्गल जो है वो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला है। कोई ना कोई आठ में से एक स्पर्श होगा, पांच में से कोई ना कोई एक रस होगा। दो प्रकार की गंध है, सो दोनों में से कोई ना कोई एक गंध होगी। पांच प्रकार के वर्ण हैं, सो उसमें से कोई ना कोई एक वर्ण होगा। इसमें विशेष बात जानने की है, विज्ञान के अनुसार भी ये चीज सिद्ध कर दी गई है, अग्नि की भी गंध होती है। और अग्नि की गंध को पकड़ने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रो ऑलिफ ओली फंक्शन के लिए एक एपरेटस बनाया, जिसको अपन गंध वहन प्रक्रिया वन कहते हैं। ओली फंक्शन को उसके लिए एक गंध को पकड़ने वाला यंत्र बनाया, और वो यंत्र लगा करके छोड़ दिया जाता है। जहां पर अग्नि लगती है वहां पर ऑटोमेटिक वो अग्नि को बुझाने के लिए फंक्शन करता है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल एक एपरेटस उसी के आधार पर बनाया। अपनी नाक जितनी सूंघ पाती है अपन से 10 गुनी गंध सूंघ लेता कुत्ता, और अपन से 24 गुनी तो सार्क मछली को भी गंध की संवेदना होती है। अपन को जिस चीज में गंध नहीं आती सो ये नहीं माने कि भैया इसमें गंध है ही नहीं। नहीं, गंध तो विद्यमान है, मेरी घ्राण इंद्री में इतना शयोपशम नहीं है कि मैं उस गंध को ग्रहण कर सकूं। इस प्रकार गंध के बारे में विशेष जानकारी दी गई। और प्रकाश तरंगे दूसरी प्रकाश तरंग से अगर उनकी लेंथ अनंत में भाग भी कम या ज्यादा है तो कलर चेंज हो जाएगा, ये विज्ञान मानता है। सो पांच रंगों के कितने कई हजार एक एक रंग के शेड हैं, जरा सा अंतर हुआ और दूसरा रंग बन गया। सो नाना प्रकार के अपन को रंग दिखाई देते कि देखो तो संसार में तो इतने रंग दिखाई देते हैं, जैन धर्म में तो पांच ही रंग लिखे हैं, सब बातें झूठी हैं। ऐसा अपने मन में भाव आने लगे तो अपनो कान धीरे से पकड़ लो कि गैर जानकारी की बात न करो। पांच रंगों से ही ढेर सारे सैकड़ों रंग बने हुए हैं। विज्ञान भी कह रहा है कि अगर उनकी जो लेंथ है एक प्रकाश तरंग से दूसरी प्रकाश तरंग की जो लेंथ है वो अगर संख्यात में भाग भी कमती ज्यादा हो जाती है तो अपन को रंग दूसरा दिखाई देने लगता है। मूल तो रंग पांच ही हैं, वर्तमान में उन्हीं रंगों के आधार पर विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस्या तपोद्योतवंत शब्द पौद्गलिक है, बंध पौद्गलिक है, सूक्ष्मता और स्थूलता भी पौद्गलिक है, संस्थान भेद तम और क्षाया आतप और उद्योत ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं, पौद्गलिक हैं। देखो शब्द दो प्रकार के अपन बोलते, एक तो भाषात्मक लिंग्विस्टिक और एक ध्वन्यात्मक, जिसको अपन अभाषात्मक भी कहेंगे फोनेटिक। और भाषात्मक में भी दो प्रकार के, एक सो अक्षर वाले और एक बिना अक्षर वाले। निरक्षरी भाषा तो केवली भगवान की होती है, अपन लोग अक्षर सहित उपयोग करते हैं भाषा का, तो अपनी भाषा अक्षर वाली है। अलग अलग देशों में अलग अलग अक्षरों के द्वारा उन शब्दों का चयन किया जाता है। सो भाषा दो प्रकार की हो गई, अक्षरी और निरक्षरी। इस प्रकार से ये शब्द के भी भाषात्मक और अभाषात्मक दो भेद करे गए। और अभाषात्मक में भी जो फोनेटिक या कि ध्वन्यात्मक है उसमें भी एक नैसर्गिक होती है और एक प्रायोगिक होती है। जो बादलों की आवाज इत्यादि अपने को गर्जना सुनाई पड़ती है वो तो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। और एक अपन जो ढोलक इत्यादि से शब्द उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो सब प्रायोगिक है। साइंस तो दो ही प्रकार की भाषा मानता है कि एक तो प्रायोगिक, जिसको संगीत उत्पन्न किया गया है जैसे विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा, वह प्रायोगिक है, और जो कोलाहल या कि नॉइस निरंतर हल्ला मचा हुआ है वो कैसा है, नेचुरल है, निरंतर चल रहा है, ऐसा विज्ञान भी मानता है। अपन इस चीज को, शब्द को ऐसे समझ सकते हैं। बंद जो है वो दो प्रकार का होता है, एक नैसर्गिक होता है और एक प्रायोगिक होता है। जो बिजली चमकती है या कि बादल अग्नि है या इंद्रधनुष है, इन सब में पुद्गल की वर्गनाएं आपस में संबंधित हुई है, तब तो ये रचना देखने में आई है, बिना बंद के नहीं हुई। ये सब नैसर्गिक है। और जो अपन एक कागज दूसरे में चिपका गए, एक चीज दूसरे में चिपका देते हैं और नए प्रकार की रचना बना लेते, सब पुद्गल का ही परिणमन है। बंद भी पुद्गल का ही परिणमन है। इस प्रकार बंद के बारे में समझना चाहिए। सूक्ष्मता और स्थूलता ये अपेक्षाकृत है। कोई चीज किसी अपेक्षा से सूक्ष्म है और कोई चीज किसी अपेक्षा से स्थूल है। सो जो सूक्ष्मता और स्थूलता है वो सब भी पौद्गलिक है, पुद्गल की ही पर्याय है। संस्थान यानी फिगर या कि स्ट्रक्चर, जो आकृति देखने में आती है, वो आकृति दो प्रकार की होती, इत्थम भूत संस्थान और अनित्थम भूत संस्थान, अर्थात चौकोर, आयताकार, गोलाकार। इस प्रकार की आकृति तो इत्थम भूत संस्थान कहलाती है, वह भी पौद्गलिक है, और अट्रेंडम कोई भी शेप उसमें नहीं बनता है, वो सब इत्थम भूत संस्थान, वह भी पौद्गलिक कहलाता है। और जितने प्रकार से भी भेद प्रभेद होते हैं वो सब भेद के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, पुद्गल के ही हैं। जैसे कि लकड़ी को अपन छीलते हैं तो बुरादा बन जाता उसका, यह भी पौद्गलिक परिणमन है। और किसी चीज को जैसे कि मटका है, उसको तोड़ तोड़ के कितने छोटे छोटे से उसके खप्पड़ बना लेते हैं, वो भी खंड खंड जो हुए हैं वह भी पौद्गलिक है। गेहूं और चावल इत्यादि का आटा बना लेते हैं, वह भी एक तरह का भेद है, वह भी पुद्गल का ही परिणमन है। इस प्रकार से, और अग्नि जब जलती है तो उसमें से जो स्फुलिंग निकलते हैं वह स्फुलिंग भी एक भेद है, वह भी पौद्गलिक है। इस तरह से विभिन्न प्रकार से डिवाइडेशन पुद्गल का किया है, ये सब पुद्गल की ही परिणाम पर्याय हैं। तम का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा। वो क्या चीज है? एंटीथेसिस है लाइट की, प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहेंगे। जैसे कि अपन कहीं पर देखते हैं कि बहुत अंधेरा है और प्रकाश की एक किरण आती है, सारी पौद्गलिक संरचना जो अंधकार के रूप में थी परिवर्तित होकर के प्रकाश के रूप में बदल जाती है। जहां अंधकार है वहां पर प्रकाश का अभाव रहेगा, और जहां प्रकाश है वहां पर अंधकार का अभाव रहेगा। दोनों एक साथ पर्याय नहीं रह सकती हैं। जहां अंधकार रूप पर्याय है वहां पर प्रकाश रूप नहीं रहेगी। तो प्रकाश रूप पर्याय के अभाव को ही अंधकार कहा है आचार्य भगवंतों ने। और जो छाया है वो तो प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाने पर उत्पन्न हुई पौद्गलिक पर्याय है, जिसको अपन छाया कहते हैं। और दूसरे प्रकार की पौद्गलिक पर्याय क्या है? जो अपन दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, मिरर इमेज, वह भी छाया ही है। अपन कहते कि छाया चित्र बनाया, या अपनी छाया पड़ गई नीचे जब धूप आई जब, और अपनी मिरर इमेज उसको भी अपन छाया ही कहेंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो बाधक चीजें प्रकाश के क्षेत्र में आ जाती हैं तो इस छाया का निर्माण हो जाता। आतप और उद्योत ये दो भी पौद्गलिक हैं। आतप तो उष्ण प्रकाश को कहते हैं और उद्योत शीत प्रकाश को कहते हैं। ठंडा प्रकाश जैसे कि अपन चंद्रमा में निकलता है, बहुत शीतलता मालूम पड़ती है, और सूर्य में तो आतप
उष्ण प्रकाश उसमें से निकलता है नाम कर्म के, आतप नाम कर्म या उद्युत नाम कर्म का उदय होता है, सो अपन को वैसा अनुभव होता है। अनुवा स्कंधाश्च, अब देखो पुद्गल के दो भेद कर दिए, अणु और स्कंध, जिसको कि विज्ञान में परमाणु कहते हैं और मॉलिक्यूल कहते हैं, उसे ही जैन दर्शन में अणु और स्कंध कहते हैं। जितने भी विज्ञान में मॉलिक्यूल्स हैं वे सब स्कंध हैं जैन दर्शन के अनुसार, और जो एटम है वो ही जैन दर्शन के अनुसार अणु है। सो जैन दर्शन में तो अणु की परिभाषा ज्यों की त्यों है, विज्ञान में तो बदल जाती है, बदलती रहती है। अनडिवाइजिबल अल्टीमेट पार्टिकल इज द एटम, ये परिभाषा जैन दर्शन में ज्यों की त्यों है। अविभागी कण को ही परमाणु कहते हैं, पुद्गल का ऐसा अविभागी कण जिसका कि और विभाजन न किया जा सके। लेकिन जिस समय डाल्टन ने परमाणु की खोज करी, सो आज के इतने वर्षों के बाद वह डाल्टन के परमाणु का क्या हुआ, जो कि डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी प्रोटॉन बहुत प्रकार के कण उसके डिवाइडेशन से उत्पन्न हुए। लेकिन विज्ञान के पास अभी भी मूल कण नहीं है जिसे वह परमाणु कह सके, जिसे और अधिक विभाजित न किया जा सके। स्कंध तो दो परमाणुओं से मिली हुई संरचना है, दो या दो से अधिक जितने भी परमाणु हैं वो सब मिलकर के स्कंद की रचना करते हैं। वो स्कंद बहुत प्रकार के होते, छह प्रकार के तो अपन के देखने में आते हैं, ऐसे स्कंद जिनका की छेदन भेदन अपन कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, वो स्थूल स्थूल प्रकार के हैं, स्थूल प्रकार के भी हैं जिनका अपन छेदन भेदन तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल इत्यादि है, दूध है, घी है, इन सबको ले जा सकते हैं, ये भी स्थूल प्रकार के स्कंद हैं। स्थूल और सूक्ष्म हैं, जो कि स्थूल इसलिए हैं क्योंकि अपन को आंख से दिखते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं सकते। आप जो है छाया को पकड़ो, दिखाई तो पड़ रही, लेकिन वह दिखाई पड़ रही इसलिए स्थूल है, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते, यह उसकी सूक्ष्मता है। ऐसे ही प्रकाश भी है, प्रकाश को अपन देख तो सकते लेकिन उसको बाकी इंद्रियों के द्वारा पकड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार ऐसा स्कंद भी है जो कि स्थूल और सूक्ष्म है, और सूक्ष्म और स्थूल स्कंद भी है। देखो सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि अपने चक्षु इंद्री से दिखाई नहीं पड़ता, हवा दिखाई पड़ती है, लेकिन अपन को हवा का स्पर्श तो होता है तो स्थूल, लेकिन आंख से नहीं दिखाई पड़ती इसलिए अपन उसको भी सूक्ष्म कहते। तो ऐसा स्कंद भी है सूक्ष्म और स्थूल प्रकार का, जो कि अपन के अनुभव में आता है, ये सब स्कंद ही हैं, भले ही अपने आंख से न दिखाई पड़ते हों। और सूक्ष्म कौन सी चीजें हैं, जो कर्म वर्गणाएं हैं, जो अपने विचार के लिए मनोवर्गणाओं का अपन उपयोग करते हैं, वो सब अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो कि अपन को पकड़ में ही नहीं आती, इनको सूक्ष्म स्कंद कहते हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद तो पुद्गल को परमाणु को ही कहते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद या कि सबसे सूक्ष्म जो दो परमाणुओं वाला है वह स्कंद, यहां पर सूक्ष्म सूक्ष्म से आचार्य भगवंतों ने कहीं कहीं पर लिया हुआ है, और कहीं पर तो परमाणु को ही सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसा कहा गया है। इस प्रकार समझना चाहिए कि इस जो अपन के पांचों इंद्रियों के ग्रहण में आते हैं वो सब पुद्गल तो हैं, लेकिन पुद्गल के स्कंद हैं, परमाणु तो अपन के इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है। चाहे विज्ञान खोज कर ले परमाणु की, लेकिन जब तक वो पांचों इंद्रियों के पकड़ में आता रहेगा तब तक जैन दर्शन के अनुसार परमाणु तो पकड़ में आया ही नहीं, परमाणु तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। भेद संगा देव्या उत्पद्यन्ते, परमाणु कैसे वो स्कंद कैसे उत्पन्न होते हैं, भेद से संघात से और भेद संघात इन दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कोई चीज है उसको अपन तोड़ो तो भी कई परमाणुओं के समूह रूप स्कंद की ही प्राप्ति होती है, आपस में मिल जावे तो भी नए स्कंद की उत्पत्ति हो जाती, कुछ थोड़ा सा उसमें से निकल जावे और कुछ थोड़ा सा जुड़ जावे, भेद भी हो जावे और संघात भी हो जावे, तो ऐसे भी स्कंद उत्पन्न हो सकते हैं।
स्कंद तो तीनों प्रकार से उत्पन्न होते, भेद से भी, भेद भेद संघात से भी और संघात से भी। वर्तमान में जो अणुबंब है वो किस बात का प्रतीक है? परमाणुओं के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त की गई, वो फिशन है एक तरह से। और फ्यूजन, फिजन और फ्यूशन दोनों चीजें पुद्गल में ही होती हैं। पूरण और गलन जिसको अपन कहते हैं पुद्गल का स्वभाव है। अपन देखें कि भेद से या कि विखंडन से भी ऊर्जा प्राप्त हुई, वह भी कैसी है? स्कंद रूप ही है, पुद्गल के स्कंद प्रकार की है, जिसको अपन वर्तमान में डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। और उद्जन बम्ब जो बनाया गया विज्ञान के द्वारा, वो परमाणुओं के आपस में संयोग से बनाया गया है। इस प्रकार भेद से भी, संघात से भी और भेद संघात दोनों से ही स्कंदों की उत्पत्ति होती। बहुत सारी बातें जो इस सूत्र के अंतर्गत अपन जान सकते हैं भैया, याद रख सको तो रख लो। पिन की नोक टिके उतने भाग में शरीर की 10 लाख शेल्स रह सकती हैं। 5 फुट वाले शरीर में 6 अरब कोशिकाएं हैं। इतना सूक्ष्म परिणमन पुद्गल का है, जबकि परमाणु नहीं है, ये सब स्कंद ही हैं। विचार करो। और कर्म परमाणु के प्रत्येक स्पंदन में असंख्यात संस्कारों के स्पंदन सूत्र अंकित होते हैं, जो कि वर्तमान में क्रोमोसोम या कि जिसको अपन गुण सूत्र कहते हैं या संस्कार सूत्र जिनको जीन कहते हैं, इस तरह इनको पकड़ लिया गया है। लेकिन यह भी परमाणु नहीं है, यह भी स्कंद रूप ही है, जो कि पुद्गल का अत्यंत सूक्ष्म परिणमन है। हाइड्रोजन के 25 लाख परमाणु अगर एक रेखा में रखे जावे तो उनकी लंबाई मात्र 1 इंच होती है। इतना सूक्ष्म स्कंद भी हो सकता है कि 1 इंची में 25 लाख परमाणु बन गए। इमेज करो, अपन तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि इतनी सी जगह में और इतने सारे लाखों की संख्या में परमाणु समा सकते हैं, स्कंद रूप से भी रहते हैं। एक खसखस के दाने के बराबर हाइड्रोजन के परमाणु का तोल कितना है? तो लिखते हैं विज्ञान में कि 40,000 संख। एक संख यानी 10 के आगे 21 शून्य रखो, 10^21। उसको कहेंगे संख। और 40,000 संख के बराबर हाइड्रोजन के परमाणुओं का कोई तोल है तो कितनी मात्रा आएगी? एक खसखस के दाने के बराबर उसकी तोल होगी, इतना ही वजन उसका होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि स्कंदों के बारे में अपन आज वर्तमान में भी जानते हैं, जिससे कि अपन को विश्वास हो जाता है कि हाँ, वास्तव में जो ज्ञान आचार्य भगवंतों ने दिया है वह तो अत्यंत सूक्ष्म है और विश्वास करने योग्य है। भेदाद अणु, लेकिन परमाणु जब भी उत्पन्न होंगे तो भेद होने पर ही होंगे। स्कंद के टूटने पर ही परमाणु उत्पन्न होंगे, आपस में मिलने से परमाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, भेद से ही उत्पन्न होते। परमाणु षटकोणी होता है, खोखला होता है और निरंतर गतिमान होता है, ये आचार्य भगवंतों ने परमाणु के बारे में लिखा हुआ है। और अनडिवाइजिबल पार्टिकल तो है ही। कुछ परमाणु ऐसे भी हैं संसार में जो कि अभी स्कंद रूप में, जिनका परिणमन ही नहीं हुआ, शुद्ध परमाणु कहलाते हैं। और जो परमाणु हैं वे सब स्कंद के भेद से ही, उनके टूटने से ही निर्मित हुए हैं। दो तरह से परमाणु संसार में पाए जाते। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, जो आंख से दिखाई पड़े ऐसे स्कंद भेद और संघात, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अकेले भेद से, अकेले संघात से जो स्कंद उत्पन्न होते हैं वे अपन को आंख से दिखाई पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो भेद और संघात से उत्पन्न हुए हैं वो तो सब स्कंद अपन को आंख से दिखाई पड़ जाते हैं। देखो, अपने हाथ में कुछ नहीं दिख रहा ठंड के दिनों में, लेकिन धीरे धीरे हाथ को ऐसे रगड़ते जाओ तो क्या होगा? मेल का एक टुकड़ा अपने हाथ में दिखाई पड़ने लगेगा, कहां से आ गया ये भैया, भेद हुआ सब हुआ, कुछ मिला कुछ टूटा और आंख से दिखने लायक स्कंद की रचना हो गई। इस प्रकार अपने को आंख से दिखने वाले स्कंद प्राप्त हो जाते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों गैसें हैं, अपन को दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अगर दोनों को एक निश्चित तापमान और दबाव के ऊपर इनका रिएक्शन करवाया जाए तो HCl बनता है जो कि अपन को दिखाई देता है। पानी भी इसी तरह का है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, लेकिन वो निश्चित तापमान पर और निश्चित दबाव पर आपस में रासायनिक क्रिया करके पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। भेद भी होता, संघात भी होता और अपने को वो पानी के रूप में दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण अपन देखते हैं। तो ये चक्षु से दिखने वाले स्कंधों की चर्चा हुई। सब द्रव्य लक्षणम, द्रव का लक्षण तो सत है, अर्थात अस्तित्व हमेशा उनका रहता है। और उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व द्रव्य होता रहे वही सत है। इस प्रकार दो सूत्रों में आचार्य भगवंतों ने